दानवीर कर्ण, दान दो। नील शरीर वाले उस वृद्ध ने हाथ की लकड़ी को हिलाते हुए कहा, क्या दो बाबा, धन धान धरती धाम। ये सब वस्तुएं तभी काम में आ सकती हैं जब जीव का अस्तित्व सुरक्षित रहे। वर्षा में भीग जाने के कारण हम ठंड से ठिठुर कर मरे जा रहे हैं, हमको एक गट्ठर सूखी लकड़ियां दे दो। दांत कटकटाते हुए उस वृद्ध ने अपनी व्यथा बताई। सूखी लकड़ियां? अंगराज ने चौंक कर अश्वत्थामा की ओर और मेरी ओर देखा। वृद्ध की लाठियां हिल रही थीं, श्वेत दाढ़ी से पानी की बूंदें टपक रही थी। यदि उसकी मांग पूरी न की जाती तो यह निश्चय ही ठिठुर कर मर जाता। छोड़, इनको इस समय लकड़ियां कहां से दी जाएं? आर्द्रा नक्षत्र की इस वर्षा में सूखी लकड़ियां कहां मिलेंगी? अंगराज चिंतित होकर मेरी ओर देखने लगे। दिग्विजय के समय उनकी आश्चर्यचकित कर देने वाली कल्पनाओं को मैं भूला नहीं था। मैं उनको क्या बताता, वो सूझ सकता था तो वह स्वयं उन्हीं को। ठहरो छोड़, इनको यहीं रोक रखो, दान इनको अवश्य मिलेगा। मोतियों से भरे हुए मुठ्ठे अकस्मात थाल में रिक्त कर वे चबूतरा छोड़कर जपाझप चिड़ियां चढ़ते हुए अपने महल में चले गए। थाड थाड, अजीब सी आवाजें, आघात करने की आवाजें उनके महल से निकलकर राजभवन के प्राचीर में गूंजने लगी। आधी घड़ी बाद ही वे सीढ़ियां उतरते हुए पुनः चबूतरे की ओर आने लगे। उनके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था। रणांगण में वायुजित पर आरूढ़ होकर हस्तगत खड्ग को विद्युत की तरह घुमाने वाला सेनापति कर्ण और कंधे पर लकड़ियों के गट्ठर रखकर जैसे कोई निषद पर्वतीय भील पर्वत के ढाल पर उतरता है, वैसे ही सीढ़ियां उतरता हुआ यह दाता कर्ण दोनों एक ही व्यक्ति हैं, यह बात वहां केवल मुझे ही विदित थी। अपने महल की छत में आधार के तिरछी खड़ी हुई लगी हुई चंदन की दो बल्लियों को स्वयं निकालकर परसों से उनको अच्छी तरह फाड़कर तथा वायुजित की वलगा में बांध कर गठरी का वह लोक विलक्षण दान कंधे पर रखकर वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे थे। मेरा मन अनेक प्रकार की भावनाओं से भर उठा। क्षण भर को मन में आया कि उनका सहोदर बंधु कहलाने की पात्रता मुझ में नहीं। यह रहा आपका दान, मेरे कारण बहुत देर तक आपको खड़ा रहना पड़ा। कंधे पर रखी हुई गठरी नीली देह वाले वृद्ध के चरणों पर रखते हुए हाथ जोड़कर भैया ने कहा, जयतु दानवीर कर्ण। उस वृद्ध ने भैया के मस्तक पर हाथ ऊंचा करते हुए आशीर्वाद दिया। गठरी उठाते समय वह वृद्ध सौंत पर स्थित पितामह और महामंत्री विदुर की ओर देखकर क्यों हंसा यह मैं समझ नहीं सका। उसके साथ ही गोलमुख मुद्रा वाले वृद्ध ने जाते जाते पुनः एक बार भैया के पैरों पर दृष्टि डाली। जिकू ही कमर वाले वे दोनों ही वृद्ध गठरी लेकर महाद्वार से बाहर निकले। नीली देह वाला वह वृद्ध महाद्वार के उपद्वार को पार करते ही एक बार की तन कर खड़ा हो गया। यह देखकर क्षण भर को मुझको ऐसा आभास हुआ कि वह वेश बदले हुए कहीं कृष्ण तो नहीं थे और उनका साथी वह दूसरा वृद्ध युधिष्ठिर तो नहीं था। दान समाप्त हो गया था। वर्षा की धाराएं रुक गई थीं, परंतु मेरे मन में विचारों की धाराएं अब भी बह रही थीं। भैया का सारथ स्वीकार कर मैंने बड़ी भूल की थी। उससे मैं भैया का रथ तो हाँक सका था, परंतु उनका सेवक नहीं बन सका था। यदि बन सका होता तो दिन भर दान के लिए खड़े रहने के कारण थक जाने वाले उनके तलवों पर चंदन मिश्रित तेल मलने का अपूर्व सौभाग्य मुझको मिल गया होता। छोटे भाई के नाते यह करने की बात कहता तो भैया इसके लिए तैयार न होते। 26. तोड़ते हुए रथ के चक्र के आरे जैसे एक के बाद एक आगे सरकते हैं, वैसे ही वर्ष के बाद वर्ष सरक रहे थे। दिग्विजयी कर्ण भैया का यह कीर्ति पीछे रह गई और दानवीर कर्ण यह कीर्ति चर्चा का विषय बन गई। दानवीर के सुपुत्र होने के कारण सभी जन उनके सभी पुत्रों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करते थे। हिमालय के पर्वत शिखरों की तरह वे अब विशालकाय हो गए थे। पिता की तरह युद्ध शास्त्र में निष्णात हो गए थे। सबसे ज्येष्ठ ऋषिसेन ने जो अन्य कौशल सहित बाहुकंटक तक हस्तगत कर लिया था, ऋषिसेन, सुषेण और ऋषिकेतु विशाली भाभी के ये तीन पुत्र तो माता पिता के सभी गुण लेकर आए थे। चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन और भानुसेन सुप्रिया भाभी के ये चार पुत्र भी विशेष गुणों से कहीं कम नहीं थे। वे सप्त पुत्र व्यायामशाला की ओर जाने से पहले दान देने के लिए खड़े हुए भैया के चरणों का स्पर्श करते तदुपरांत आगे जाते। उनको देखकर मुझको यह संतोष होने लगा कि भैया का जीवन कृतार्थ हो गया। अश्वत्थामा की तरह मैंने जीवन का गहन अध्ययन नहीं किया था, भैया की तरह सुख दुखों की घटनाओं के रस से भरे हुए चषक भी मैंने पचाए नहीं थे। मेरा जीवन तो लहलहाती हुई फसल के पौधों से सुशोभित खेत की मेड़ पर उगी हुई घास की तरह ही बड़ा था। दूर से देखने वाले को वह घास भी फसल की तरह ही लगती है। अंगराज के बंधु होने की बात यदि छोड़ दी जाए तो मेरी स्वतंत्र योग्यता ही क्या थी। केवल उनके कारण ही मैं भी सबसे प्रसिद्ध हो गया था। इसीलिए मुझे सदैव यही अनुभूति होती कि जीवन एक महान योगायोग है। पूर्व जन्म के पुण्यों के ऋणानुबंधन के बल पर ही हम दोनों ने राधा माता के कुच्छी में जन्म लिया था। जीवन भर हाथ में हाथ लेकर विशुद्ध मन से साथ निभाया था। मिट्टी की घड़े के टुकड़े ने प्रयाग क्षेत्र में विशाली भाभी का अंगराज से नाता जोड़ दिया था। आगे चलकर उन्होंने जीवन के घड़े प्रेम रस से परिपूर्ण किए थे, अब तो वे आकंठ भर गए थे। सामाजिक रूढ़ियों के वशीभूत होकर जिस धनुर्धर कर्ण को गुरु द्रोण ने दूर धकेल दिया था, उसी कर्ण को उन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा ने अपना प्राण प्रिय मित्र बनाया था। पितामह भीष्म ने कर्ण को एक बार धिक्कारा था, फिर उसका दिग्विजय योद्धा के रूप में स्वागत भी किया था। परस्पर विरोधी घटनाओं का द्वंद्व देखते हुए मेरे मन में एक ही विचार आता था कि जीवन एक महान योगायोग है। यह विचार मैंने भैया से कहा तो वे बोले, नहीं शोण, जीवन योगायोग नहीं, जन्म योगायोग है। जीवन योगायोग की अपेक्षा कर्तृत्व पर अवलंबित है। उनका प्रत्येक विचार, प्रत्येक कल्पना इतनी बेजोड़ होती कि विरोध के लिए स्थान ही नहीं रहता था। फिर भी वे अनेक बार मुझसे सम्मति क्यों लेते थे, यही मेरी समझ में नहीं आता था। शोण, मैं दान देता हूँ, सभी मुझे दानवीर कहते हैं, परंतु मेरी यह दानवीरता तुमको क्या संकुचित नहीं लगती? हस्तिनापुर और आसपास के चार राज्य, इनके अतिरिक्त बाहर के आवश्यकता वालों को तो मैं क्या दे सकता हूँ? दिग्विजय के लिए हम सारे आर्यावर्त में घूम आए, परंतु क्या दान देने के लिए भी घूमे? बताओ, इसका उपाय बताओ, उन्होंने एक बार मुझसे पूछा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो इसका एक ही मार्ग है, तुम्हारे 7 पुत्रों का विवाह, और वे भी दूरदेशीय सारथी कन्याओं से। इस निमित्त से सभी राज्यों के याचक यहाँ निमंत्रित किए जा सकेंगे। जो आने में असमर्थ होंगे उनके लिए अपने नए संबंधियों द्वारा हम धन, धान्य, वस्त्र आदि भिजवा सकेंगे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनके पुत्रों के विवाह यथासंभव शीघ्र ही हो जाएं, क्योंकि वे सब विवाह योग्य हो गए थे। ठीक है, तुम्हारा विचार उचित है, तुम और सत्यसेन जाओ और वधु कन्याएं पसंद कराओ। अवंती, कामरूप, कम्बोज, कश्मीर आदि दूर देशों की वे हों। सत्यसेन पश्चिम और उत्तर की ओर जाएंगे, तुम पूर्व और दक्षिण की ओर जाओ। और एक बात का ध्यान रखना, मीनाक्षी के लिए हमारे पुत्रों से भी अधिक सुस्वरूप वर ढूंढ कर लाना होगा, वह अवसयानी हो गई है। इतना सुस्वरूप वर कहाँ मिलेगा, क्यों नहीं? यदि तुमसे न हो सके तो यह काम मैं करूँगा, कम से कम इस निमित्त से मथुरा तो जा सकूँगा, मैं ही देख लूँगा उसके लिए योग्य वर। उन्होंने मेरी कन्या के लिए वर ढूंढने का काम अपने ऊपर ले लिया। 27 देश देश में घूमकर मैंने और सत्यसेन ने वधु कन्याएं पसंद की। भैया ने मीनाक्षी के लिए मथुरा में वर चुना। सर्वत्र निमंत्रण भेजे गए। उन निमंत्रणों में नए संबंधियों से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की गई थी कि वे अधिकाधिक संख्या में अनाथ और अपंगों को लेकर आएं। राज ज्योतिषी और पुरोहित द्वारा बताया गया शुभ दिन आया। राजनगरी में सर्वत्र घूमकर विशाली और सुप्रिया भाभी ने अक्षत बांटे थे और सबको निमंत्रण दिया था। नगर के बाहर विदुर की पर्णकुटी में जाना भी वे भूली नहीं थी। प्रातःकाल से ही राजभवन में नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी। अपने दिग्विजयी सेनापति और दानवीर महामानव के पुत्रों के विवाह का आनंद व्यक्त करने के लिए सभी ने अपने अपने निवास स्थान सजाए थे। ये सूत पुत्रों के विवाह है यह कहने का साहस अब किसी के भी राजा में न था। राजभवन तो किसी नववधु की तरह सजाया गया था। हमारे थकित माता पिता शरीरों के कष्ट भूल कर नातियों के विवाह में बनाए गए भव्य मंडपों में वेदियों के आसपास रखे मंगल कलशों पर श्रीफल रख रहे थे। जीवन भ्रांत हो गया था, हमारे ऊपर मुक्त हस्त से सुख का दान कर रहा था। दिग्विजय के सभी राजागण हस्तिनापुर में आए हुए थे। जो नहीं आ सके थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में अमात्य, सचिव या सेनापति किसी न किसी को भेजा अवश्य था। वे सभी लोग वधूवरों को देखने के लिए बजाय मंडप के बाहर ब्राह्मण, ऋषि मुनि, अनाथ, आपदग्रस्त आदि को खड़े खड़े दान देते हुए अंगराज को देखने के लिए ही अधिक भीड़ करने लगे। महाराज, धृतराष्ट्र की तरह यदि मैं नगर का अधिपति होता तो हस्तिनापुर नाम बदलकर इस नगर का नाम कर्णपुर ही रख देता। समस्त उत्सव को देखकर अभिभूत विदर्भराज रुक्मी मुझसे बोला। विवाह संपन्न हुए। देश देश के तृप्त याचक जय तु कर्ण जय तु कहकर आशीर्वाद देते हुए चले गए। उस रात संपूर्ण नगर में समाइयों का जो प्रकाश किया गया था उसको देखते समय मुझे यह भ्रम हो गया था कि स्वर्ग आकाश में है या धरती पर। अपने पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देते हुए भैया ने जो कुछ कहा था उनका वह कथन मेरे कानों में गूंज रहा था। राजभवन में आने पर भी यह कभी मत भूलना कि तुम सारथी कन्याए हो, यह था वह कथन। इसको स्मरण करते समय मैं जगत को भूल गया। अपवाद स्वरूप मन के कोने में कहीं दूर पांडवों की स्मृति चुलबुला रही थी। उनको वनवास गए 10 वर्ष हो गए थे। किसी अरण्य में किसी जीर्ण पर्णकुटी में अंधकार का काला वस्त्र ओढ़कर वे सो रहे होंगे। मन अस्वस्थ था। मीनाक्षी को पतिगृह भेजते समय जो दुख हुआ था उसको मैं उस जैसी 7 मीनाक्षी पुत्र वधुओं के रूप में भवन में घूम रही हैं यह देखकर ही पी गया। याचकों को देने से जो कोठरियां रिक्त हो गई थी वे विवाह में मिले उपहार से पुनः भर गई थी। गंगा के प्रवाह की तरह भैया का दान यज्ञ अभी भी अखंड चल रहा था। एक भी याचक विमुख नहीं लौटता था, न भविष्य में लौटने वाला था। पतिगृह जाते समय मीनाक्षी ने अंगराज के लिए अपने अपने वंदनीय ताऊ जी के लिए एक संदेश दिया था। विवाह के धूमधाम में मैं वह उनको बता नहीं पाया था। वह संदेश था, आपके कुंडलों से खेलने वाले पोतों को देखने के लिए मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगी। यह कहकर उनके प्रसन्न मुख पर हास्य छटा देखने के लिए मैं उनके महल के द्वार पर खड़ा था। परंतु सूर्योदय होने पर भी उनके भवन का द्वार ही बंद था। 8-10 बार खटखटाने पर भीतर से उत्तर नहीं आया। संदेह से मन आच्छादित हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भैया द्वार खोलो, मैंने भयभीत होकर जैसे तैसे कहा। कौन छोड़, अरगला दूर हुई, द्वार खुल गया। सुनहरे बालों की कंचित लटें बिखर जाने के कारण उनका सदैव प्रसन्न रहने वाला मुख चिंताग्रस्त दिखाई दे रहा था। पीठ पीछे हाथ बांध कर वे महल में निरंतर इधर से उधर आकुल होकर चक्कर काटने लगे। क्यों, क्या बात है, तुम्हारा मुख इतना म्लान क्यों है? मुझसे रहा न गया इसलिए मैंने पूछा। कुछ 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 भी सूझ नहीं रहा है सोंड़, किस संबंध में कह रहे हो तुम? स्वप्न के, रात में मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न? अरे स्वप्न सत्य नहीं होते। नहीं सोंड़, मेरा मन मुझसे कह रहा है कि यह स्वप्न अवश्य सत्य होगा। इस स्वप्न में साक्षात सूर्यदेव से मेरा वार्तालाप हुआ है। क्या क्या वार्तालाप हुआ है? उन्होंने कहा है कि कल साक्षात इंद्र याचक बनकर तुम्हारे द्वार पर आएगा। धन संपत्ति वस्त्र गाय आदि कुछ न मांगकर वे मांगने वाले हैं। क्या मांगने वाले हैं वो? कवच और कुंडल छोड़, कवच और कुंडल, और वे भी अर्जुन के लिए। वे द्रुत गति से चक्कर लगाने लगे। नहीं भैया, कुछ भी हो जाए यह दान तुम कभी मत देना। यह दान नहीं है तो दास्ता बन जाएगी। मैं लगभग चीख सा पड़ा, मेरा शरीर थरथर कांप रहा था। यही बात सूर्यदेव ने भी मुझसे जोर देकर कही है। उन्होंने बार बार स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि तुमने कवच कुंडल दिए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फिर तुमने उनको क्या उत्तर दिया? छोड़ो, मैंने जो उत्तर दिया है वह तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, सुन भी न सकोगे। कहो, शीघ्र न बताया तो मेरी सांस रुक जाएगी। सूर्यदेव को वंदन कर मैंने कहा कि यदि प्रत्यक्ष देवराज इंद्र याचक बनकर मेरे द्वार पर आ जाए तो ऐसे याचक को उसकी महत्ता के अनुरूप कवच कुंडलों का दान मैं अवश्य दूंगा। उनके शब्द तप्त लौह रस जैसे मेरे कानों में घुसे। क्यों, किस लिए तुम प्राणों से भयानक यह युद्ध खेलना चाहते हो? सोण, यह बात तुम अभी नहीं जान पाओगे। यह दान केवल कीर्ति के लिए दूंगा। कीर्ति, 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 अब तक तुम्हें क्या कम कीर्ति मिली है? कीर्ति का अर्थ अंततः क्या है और कैसी कीर्ति चाहते हो तुम? बल और वृत्तासुर को जान से मारने वाले स्वर्ग के अधिपति, देवों को भी देव कहे जाने वाले इंद्र का वरदाता कर्ण, यह कीर्ति है मैं संपादित करना चाहता हूँ। सोण, कल साक्षात स्वर्ग इस पुरातन धरित्री के पास भिक्षा मांगने आएगा। इस वैभव के लिए कवच कुंडल ही क्या, मैं तो प्राणों को भी आहुति दे दूंगा। जन्म मृत्यु के संबंध में वीरों की कल्पनाएं कुछ और ही होती हैं। कीर्तिहीन मनुष्य जीवित होते हुए भी मृतवत ही होता है। कीर्तिवान के लिए इस स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कीर्ति मनुष्य को स्मृति के रूप में अमर नवजीवन देने वाली दूसरी माता होती है। कीर्तिहीन जीवन जीवन मृत का जीवन होता है। दिन रात भोजन, निद्रा, धन, प्रेम आदि के लिए भागते रहने का ही नाम आयुष्य नहीं है। आयुष्य की गिनती कीर्ति के मानदंड से ही हुआ करती है। यूं तो महासागर में सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले देव मत्स्य नहीं होते हैं क्या? परंतु कोई भी उनको अमर नहीं कहता, केवल जीवित रहना ही जीना नहीं है। जीवन कैसा होना चाहिए यह कीर्ति बताया करती है। यूं तो पृथ्वी के इस विशाल पृष्ठभाग पर प्रतिदिन सहस्त्रों जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं। उनके लिए आंसू बहाने तक को किसी के पास समय नहीं होता है। परंतु जिनके जाने से प्रत्येक के मन के कुंभ वियोग की विदारक यातना से भंग हो जाते हैं, वे ही सच्चे कीर्तिवान हैं। वे ही सच्चे अर्थों में जिए और सच्चे अर्थों में मरे। इसीलिए जीवन और कीर्ति, इसमें से क्या चाहते हो, यह पूछने वाले सूर्यदेव को मैंने उत्तर दिया, कीर्ति। कीर्ति को कलंकित कर प्राप्त होने वाला जीवन मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। तो फिर कीर्ति दिलाने वाले इस दान को देते समय तुम इतने व्याकुल क्यों हो गए हो? भैया, जीवन की आशा सभी आकांक्षाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है, इससे इनकार मत करो। जीवित रहते हुए यदि कीर्ति मिल जाए तो आत्मसम्मान का सुख भी मिल जाता है, परंतु मृत्यु के बाद उस कीर्ति का क्या उपयोग? यदि शव पर सुगंधित पुष्पों की माला चढ़ा दी जाए तो उस सुगंध का अनुभव वह शव नहीं कर सकता। जगत में अस्तित्व बनाए रखना, किसी भी मार्ग से अस्तित्व बनाए रखना ही सच्चा पराक्रम है, यही सच्चा जीवन है। तुम्हारे द्वार पर जो इंद्र को भेज रहे हैं उनकी ही कौन सी उदात्त कल्पना है? वे केवल जीवित रहना चाहते हैं। जीवित रहना प्राणी का स्थायी भाव है और इसीलिए तुम्हारा मन आज कातर हो गया है जीने के लिए, क्योंकि तुम भी यह जानते हो कि कवच कुंडलों के कारण तुम युद्ध में अबाध्य हो। अर्जुन जैसा धनुर्धर भी तुम्हारा पराभव नहीं कर पाएगा। भैया, मन के सत्य स्वरूप का साथ दो, कवच कुंडल मत दो। कम से कम अर्जुन वध की प्रतिज्ञा को तो स्मरण रखो। सोण, बहुत कह गए, मेरे साथ रहकर जो बातें कभी नहीं कही थी वे भी कह दी। सरोवर में खिले हुए कमल पुष्पों के मकरंद की मधुरता को सरोवर का जल भी नहीं जानता, उसको जानता है दूरस्थ भ्रमर। तुम्हारी भी यही स्थिति। जीवन भर मैंने कैसा आचरण किया यह तुम भी नहीं जान सके। इस बात पर मुझको आश्चर्य हो रहा है। मेरे साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर जीवन बिताते हुए भी तुम इस तरह की बातें करते हो। प्राणों के भय से मैं कातर हो गया हूँ, व्याकुल हो गया हूँ, और इसीलिए मुझको कुछ सूझ नहीं रहा है, और तुम भी यही समझोगे। छोड़, मैं कातर गया हो गया हूँ, व्याकुल हो गया हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, यह सब सत्य है, पर प्राणों के भय से नहीं। वे रहस्य के जाल को अधिक उलझा रहे थे। छोड़, देह पर स्थित इस अभेद्य कवच को और इन चमकने वाले कुंडलों को देवराज इंद्र यदि मांगते हैं तो उनको ये कैसे और किस स्थान से काट कर दूं, यही नहीं सूझ रहा है, इसीलिए मैं अस्वस्थ हूँ। यह अभेद्य शरीर पर कैसे शस्त्र चलाऊं? सामने उपस्थित वह कीर्ति का यह कुंभ कवच कुंडलों के अभेद्य होने के कारण कहीं भग्न न हो जाएगा क्या? केवल यही सोचकर मैं अस्वस्थ हूँ। रात भर विचार करता रहा, परंतु अभी तक कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। बताओ श्रोण, इस कवच को मैं कैसे और किस स्थान से काट सकूंगा? वे पुनः पुनः पीछे हाथ बांध कर चक्कर लगाने लगे। मैंने सिर झुका लिया। उनके गगन स्पर्शी विचारों के सम्मुख मेरे अपने विचार अतिशय क्षुद्र लगे। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। अंत में मुझे उसी स्थिति में भवन छोड़कर वे अर्घदान के लिए सूखा उत्तरी लेकर चले गए। वृषाली भाभी सहित सभी को यह वार्ता सुनकर उन्हें सचेत करने के लिए मैं प्रत्येक महल में घूमने लगा, परंतु उनके दृढ़ निश्चय से सभी पूर्ण परिचित थे। कवच कुंडलों के दान के निर्णय से उन्हें विमुख करने की शक्ति हम में से किसी में भी नहीं थी। 28. नियमानुसार स्नान आदि दैनिक कृत्य तथा अर्घ ध्यान समाप्त कर वे दान के चबूतरे पर आकर खड़े हो गए। याचकों की पंक्ति दूर तक फैली हुई थी। उनमें कहीं देवेंद्र दिखाई देते हैं क्या, यह सोचकर मैंने उन पर दृष्टि डाली। वे कहीं दिखाई नहीं दिए। संतोष की सांस ली। जो वस्तु अंगराज मुझसे मांग रहे थे वही उनके हाथ में दे रहा था। सुवर्ण, वस्त्र, मोती, धान्य, तेल आदि पदार्थ मुक्त हस्त से दान किए गए। सभी याचक पूरे हो गए। सौंत पर चिंतातुर खड़े हुए माता पिता विशाली भाभी तथा सप्त पुत्र मुक्ति की सांस लेकर भीतर लौट गए। तो स्वप्न केवल स्वप्न ही निकला, यह बुदबुदाते हुए मैंने नीचे गिरे हुए चार मोती थाल में डाले। इतने में कृष्ण देह यष्टि का एक ब्राह्मण महाद्वार के गर्भद्वार से भीतर प्रविष्ट हुआ और क्षण भर में वहीं रुका। मेरा मन शंका से कांप उठा। कौन है, अंगराज ने पूछा। एक दरिद्र ब्राह्मण, एक याचक। आओ बंधु, शीघ्रता करो, दान का समय समाप्त हो रहा है, शीघ्र आओ। कटी पर दोनों हाथ रखकर झुकता हुआ वह ब्राह्मण चबूतरे के पास आया। आंखें मिचमिची कर पोपला मुंह चलाता हुआ वह खड़ा हो गया। ब्रह्मज्ञ, क्या दूं? धन, धेनु, धरती, धाम, अश्व, अन्न, वस्त्र, फल, पुष्प, मधुर रस, सेवक, सेविका या ग्रंथ लेखन के लिए भुर्ज पत्र, क्या दूं? आज्ञा दीजिए। कर्ण, तुम दानवीर हो, तुम्हारा यह सुनकर मैं दूर देश से आया हूँ। मुझको धन नहीं चाहिए, मैं धन लोभी नहीं हूँ। धेनु नहीं चाहिए, मैं गोपाल नहीं हूँ। धरती नहीं चाहिए, मैं राजा नहीं हूँ। जहाँ चला जाऊँ वहीं धाम है, इसीलिए मुझको धाम भी नहीं चाहिए। अश्व, अन्न, फल, पुष्प कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ग्रंथ लेखन करने वाला ऋषि नहीं भी, इसीलिए तुम्हारे भोजपत्रों की भी मुझे आवश्यकता नहीं। तो फिर क्या चाहिए? क्या मैं स्वयं आपका सेवक बनूँ? आपकी आज्ञा अनुसार क्या आपका अनुसरण करूँ? ब्रह्मवर्य आज्ञा दें, संकोच न करें। सागर के द्वार से मेघ विमुख लौट जाए यह संभव हो सकता है, परंतु कर्ण के द्वार से याचक विमुख लौट कर नहीं जाएगा। यह तुम्हारा मिथ्या दंभ है, तुम्हारी कीर्ति कलंकित न हो, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ मांगूंगा वह तुम मुझे कभी दे नहीं सकोगे। ब्राह्मण लौट कर महाद्वार की ओर जाने लगा। अंगराज ने चबूतरा छोड़कर दौड़ते हुए जाकर उसके चरण पकड़ लिए। मेरी धवल कीर्ति को इस तरह कालिमा मत लगाइए। इस मस्तक को भी मैं आपके चरणों पर उतार कर रख दूंगा, परंतु आप रिक्त हस्त न लौटे, आज्ञा कीजिए, आपकी क्या इच्छा है? दानवीर कहलाने वाले कर्ण, अपनी दानवीरता पर यदि तुम्हें इतना गगनभेदी अभिमान है तो मुझे दे दो अपने कवच कुंडलों का दान। ब्राह्मण ने हाथ पसारे। भैया तत्क्षण ऐसे उठ खड़े हुए जैसे अग्नि का चटक लग गया हो। उनके नीले नीले नेत्रों में आंसू भर आए थे, होठ थरथराने लगे। देवराज इंद्र, इस कर्ण जैसे साधारण सुपुत्र के द्वार पर आप एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में, मैं कहाँ हूँ? यह धरती है या स्वर्ग? स्वर्ग में अमृत का प्राशन कर अप्सराओं के बीच रमण करने वाला देवों का राजा मर्त्यलोक के एक सुतपुत्र के द्वार पर हाथ पसारे खड़ा है, यह सत्य है या स्वप्न? शोण, आज हमारी दिग्विजय वास्तविक अर्थ में पूर्ण हुई। चारों दिशाओं के ऊपर एक पांचवी दिशा होती है, वह आज भी पराजित हुई। अंगराज के द्वार पर साक्षात देवराज याचक के रूप में खड़े हैं। आइए देवादिदेव, मैं आपका स्वागत करता हूँ और कवच कुंडलों का दान आपकी झोली में डालता हूँ, परंतु इसके लिए बड़ी झोली लेकर आइए। देवराज, मेरा यह सर्वांग अभेद्य है, इस पर शस्त्र नहीं चल सकता, इसीलिए प्राण निकले तक सांस रोक कर मैं अपना अमृत शरीर ही इस झोली में डाल दूंगा। स्वर्ग में जाने के बाद अपने राज्य के चारों ओर लगे हुए स्वर्णिम बाढ़ पर इसे सुखाने को डाल देना, मेरा शीतल रक्त वाष्प बनकर उड़ जाएगा। यह सुवर्ण कवच अखंड रूप में आपको मिल जाएगा जैसा आप चाहते हैं। अंगराज कुछ देर रुके, फिर बोले, परंतु किस लिए चाहिए यह आपको? स्वर्ग के भंडार में स्वर्ण का संचय कम होने लगा है, इसलिए? या आपके सिंहासन का व्याघ्राजन्य चीर्ण हो गया है, उसके स्थान पर नया डालना है, इसलिए? या आपके वज्र के समान समर्थ दूसरी एक वस्तु भी कवच के रूप में विश्व में है, इसलिए? कहिए देवराज, स्वर्ग की जिन सीढ़ियों से उतरकर आप आज धरती पर आए हैं, उन पर पावणे के रूप में बिछाने के लिए तो आपको मेरा यह सुवर्ण कवच नहीं चाहिए न? क्यों, आप बोलते क्यों नहीं? नहुष महाराज के बाद पृथ्वी पर आपकी यह पहली ही फेरी है। बोलिए महेंद्र, स्तब्ध क्यों है? यह कवच आपके चरणों पर रख सकूं, इसका उपाय भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे जैसे सुतपुत्र के प्राणों के लिए स्वर्ग में भला कहाँ स्थान होगा? केवल कवच और कुंडल ही लेकर जाएंगे न आप, तो फिर उनको मैं अलग कैसे करूं? क्योंकि वे तो जन्म से ही शरीर से जुड़े हुए हैं, उनको कैसे अलग करूं? मस्तिष्क की सभी तंत्रियों को तान कर मैं उपाय ढूंढ रहा हूं, परंतु वह मिल नहीं रहा। इसीलिए सोचकर कि मेरी निर्मल कीर्ति कलंकित हो रही है, मैं लज्जित मुख आपके सम्मुख खड़ा हूं। नहीं कर्ण, तुम्हारी कीर्ति कलंकित नहीं होगी। कटी से खड्ग खींच लो और अपने कमल दल जैसे सुकोमल मुख में उसे उसके तीक्ष्ण फलक को चलाओ। कवच की एक पपड़ी अलग होकर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। उसको पकड़कर अपने हाथों से कवच को उतार कर अलग कर दो, वैसे ही जैसे वृक्ष की छाल उतारते हैं। कर्ण, पांचों दिशाओं का दिग्विजय केवल तुम ही कर सकते हो। देवराज, आपके ऋण से मैं ऋण हूँ, यह तो मुझे सूझ ही नहीं सका। आप धन्य हैं। उनकी आंखें अद्भुत आनंद से चमक उठी। जल्दी जल्दी चलते हुए वे चबूतरे पर निश्चित स्थान पर आए। उन्होंने सर्र से खड्ग म्यान से बाहर निकाला। उस आवाज के साथ भाई के गंभीर चेहरन मेरे संपूर्ण शरीर में दौड़ गई। उनके हाथ के खड़ को रोकता हुआ मैं व्याकुल होकर बोला, भैया नहीं नहीं, आपके कानों के कुंडल आज पुनः निस्तेज हो गए हैं। शोण कुंडल आज सदैव के लिए निस्तेज हो जाएंगे, परंतु आज उनके निस्तेज हो जाने की चिंता मुझे तनिक भी नहीं है। उनके सामने आज स्वर्ग भी निस्तेज हो जाए, दूर हटो। उन्होंने खड़ग खींच लिया। मैंने उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और धड़ाधड़ उसको पटकता हुआ चीखने लगा, भैया इतनी भिक्षा मुझे भी दे दो, कवच पर शस्त्र मत चलाओ, मेरा मस्तक भिन्न छिन्ना रहा है। उनका किसी की भी ओर ध्यान नहीं था। पास से फेंकते समय शकुनी मामा इतने उन्मत्त नहीं हुए थे जितने कि इस समय भैया हो गए थे। सहभोज के समय मध्यपि दुर्योधन इतना उन्मत्त नहीं हुआ था जितने इस समय कर्णराज थे। आंखें बंद कर सूर्य स्त्रोत पढ़ते हुए अपने आंखें खोली हुए मुख में उन्होंने खड़ग का तीक्ष्ण फलक खप से भोंक दिया। रक्त की एक दो बौछारें देवेंद्र के कटे वस्त्र पर भी पड़ी। भैया भैया, मैं इतनी तीव्रता से चीख पड़ा। बचपन में इनके रथ के पीछे दौड़ते हुए भी मुझे इतना व्याकुल होकर नहीं चीखा था, परंतु जैसा उस समय मुझको मेरा क्रंदन सुनाई दे रहा था वैसा आज सुनाई नहीं दिया। जैसे वृक्ष से छाल उतारते हैं वैसे ही अपने ही हाथों से अपना कवच अलग करने लगे। अंजीर का फल काटते ही अंदर का रक्तवर्णी गर्भ जैसे अनावृत हो जाता, वैसे उनका मांसल शरीर क्षण प्रति क्षण अनावृत होने लगा। गंगा के तट पर बुर्ज जैसे जल से भीगा जाता है वैसे उनका शरीर उष्ण रक्त से भीग गया। मेरी संपूर्ण देह में ऐसी यातनाएं हो रही थी जैसे कोई असंख्य बाणों की नोकों को चुभ रहा हो। आंखों के आगे चबूतरा घूम रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। सिर दबाकर और फिर घुटनों में छिपाकर मैं तत्क्षण नीचे बैठ गया। अब सभी को ही नीचे बैठना था। जैसे वस्त्र उतारते हैं वैसे ही हंसते हंसते कवच उतार कर उन्होंने देवराज के हाथों में दे दिया। क्षण भर में एक कुंडल भी काट कर उस पर रख दिए। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, ऐसा कौन सा आनंद मिल गया था उनको। हम सबकी आशा आकांक्षाओं पर अंगारे डालकर उन्होंने देवेंद्र के चरणों में पुष्प बिखेर रहे थे। उनको क्या सुख मिला यह जानने के लिए मैंने सिर उठाकर उनकी मुद्रा देखी। मृत्यु भी इतनी विभत्स नहीं होगी। संपूर्ण देह पर से कवच उतार देने के कारण अपने अनावृत रक्त रंजित शरीर से तथा कानों के कटे हुए निचले भागों से वे इतने विद्रूप दिखाई दे रहे थे कि मैं अवाक रह गया। वे चबूतरे पर ऐसे खड़े थे जैसे दावानल में आधा जलकर बुझा हुआ वृक्ष खड़ा हो। स्वयं को जैसे तैसे संभालता हुआ मैं उठा। मैं जीवित हूँ या मृत, यही समझ में नहीं आता था। वे वीर धनुर्धर, दिग्विजयी सेनापति, दानवीर कर्ण, आह, अब ये कुछ भी नहीं थे। वे तो विरूपता का एक विकृत पुतला मात्र दिखाई दे रहे थे। मेरी ओर देखकर वे सदैव की भांति हंसे, परंतु मुझे उनकी हंसी सदैव जैसी नहीं दिखाई दी। रक्तवर्णी मुख के चारों के भीतर से बाहर झांकते हुए उनके चमकचमाते सुनहले दांत भयानक दिखाई दे रहे थे। सिर के सुंदर सुनहले केश कवच के साथ चले जाने के कारण वह गदा की तरह केवल गोल दिखाई दे रहा था। कानों के कटे हुए निचले भाग के पास पहले की तरह वैजनी सुनहली किरणें नहीं थी, वहां से संचित रक्त बिंदु केवल रक्त बिंदु। वसु उनको उस विरूप अवस्था में देख राजभवन की सीढ़ियों पर मूर्छित होकर गिरती हुई राधा माता लुढ़क कर चीखती हुई चौक में जा टकराई। उस विरूप दशा में भी आगे बढ़कर उन्होंने राधा माता को संभालने का प्रयत्न किया, परंतु उष्ण रक्त के स्पर्श से उनके देह पर फफोले उठ रहे थे। यह देखकर वे पुनः दूर हो गए। उस रक्तरंजित विरूप शरीर में विशाल मन देखकर हंसा जाया दैव की गति पर रोया जाए यही मेरी समझ में नहीं आया। कवच कुंडल हाथ में पकड़े हुए इंद्र के हाथ भी जल गए थे, परंतु उनके मन की जलन शांत हो गई थी। उनका अर्जुन सुरक्षित हो गया था इसलिए, या एक अद्वितीय दानवीर के दर्शन हो गए थे इसलिए, यह जान सकना संभव नहीं था। राजभवन की सीढ़ियां उतरकर विशाल सुप्रिया भाभी दानवीर की ओर दौड़ी, परंतु वे भी उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी। दूर से ही नाथ महाराज कहकर हृदय द्रावक रुदन कर रही थी, मस्तक सुन्न हो रहा था। राजभवन के समस्त सौंध भर गए थे। दिग्विजयी सामंतशाली वीर का विरूप पुत्र में रूपांतर सभी जन आंखों से अश्रु बहाते हुए देख रहे थे, लेकिन भैया चबूतरे पर निश्चल खड़े थे। जहाँ उनके हाथ से दान लेते समय तृप्त याचकों के अश्रु गिरे थे, उसी चबूतरे पर उनका गाढ़ा रक्त जम गया था। सभी जन हाय हाय कहकर व्याकुल हो उठे। मैंने कानों को हाथों में आच्छादित कर लिया। मेरे कानों को उनके जय जयकार के अतिरिक्त और कुछ सुनने का अभ्यास नहीं था। उनकी विरूपता की अपेक्षा सबकी यह सहानुभूति मुझे असह्य लगी थी। चबूतरा छोड़कर वे देवेंद्र के पास आए। धीरे धीरे देवेंद्र के चरणों से हाथ लगाते हुए वे बोले, देवराज, किसी हृदय को यातना देते हुए मैं जीना नहीं चाहता। मेरे लिए सब इन सब का हृदय तिल तिल कर टूट रहा है। यदि कर सको तो मेरे शरीर को सुरूप कर दो, नहीं तो यह खड्ग इस कंठ पर चला दो। अब मेरा मस्तक सहज ही धड़ से अलग हो जाएगा। हाथ में लगा हुआ खड्ग भी उन्होंने देवराज के चरणों पर रख कर सिर झुका लिया। सदैव सुवर्ण की तरह चमकने वाले उनके प्रखर पीठ अब तप्त जैसे लोहे जैसे दिखाई दे रही थी। उठो अंगराज कर्ण, तुम धन्य हो। मैं संतुष्ट होकर तुम्हें एक अमोघ अस्त्र देता हूँ, वैजयंती अस्त्र। देवेंद्र ने उनको ऊपर उठाया और उनके सर्वांग पर हाथ फेरा। उनका शरीर जैसे धीरे धीरे स्वरूप दिखाई देने लगा। जैसे कुहासा छट जाता है वैसे ही रक्तवर्ण दूर हो गया, कवच चला गया, त्वचा आ गई। जय तु दानवीर कर्ण, आशीर्वाद देकर ब्राह्मण वेशधारी देवेंद्र महाद्वार से बाहर चले गए, कवच कुंडल लेकर और अपने पराजय उस चबूतरे पर पीछे छोड़कर। अंगराज का कवच चला गया है यह भूलकर अनेक जनों ने तुरंत आगे बढ़कर उनको आलिंगन पाश में बांध लिया। किसी ने घोषणा की, दानवीर कर्ण जीवेत शरद शतम। मुझको वे घोषणाएं सुनाई नहीं दे रही थी। कमच के टपके हुए अंतिम रक्त बिंदु को मैं अनिमेष दृष्टि से जी भरकर देखने लगा। बधिर होकर राजभवन के सौंध पर ऊपर से फूल बरसाए गए, वे स्वर्ग से बरसाए गए या अन्यत्र कहीं से, यह देखने के लिए किसी के पास अवसर नहीं था। सबने स्नेहपूर्वक उनको घेर रखा था। वे क्या अनुभव कर रहे थे यह बताना असंभव था। आगे बढ़कर उन्होंने राधा माता को वंदन किया। वसु, राधा माता का कंठ अवरुद्ध हो गया था। वसु नहीं, वह कर्तन मात, उन्होंने शांत भाव से कहा। राधा माता ने उनके कटे हुए कानों को टटोल कर देखा। बांवरा था या उनका मात्र प्रेम। राधा माता को संभालते हुए वे राजभवन की सीढ़ियां पर शांतिपूर्वक चढ़ने लगे। उनके पुत्र पुत्रवधु आतिष्ठ हैं। मैं किसी का भी उनको भान नहीं था। दोनों ओर खड़े मुग्ध प्रेक्षक भावनावेग से उन मात पुत्रों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। हाँ, उनका कवच कुंडलहीन शरीर सूर्य देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे पश्चिम क्षितिज से समय से कुछ पूर्व ही ढल चुके थे। चारों ओर संध्या छाया घनीभूत हो रही थी। कमच कुंडल दान करके भैया ने क्या प्राप्त किया था? किसी भी एक महान योद्धा को गत प्राण कर देने वाला इंद्र का अमोघ वैजयंती अस्त्र और दिगंध व्यापी दिव्य कीर्ति।